अब थोड़ी सी बात करते हैं पारे से मुतल्लिक और पारा नंबर 9 के साथ इसका रब देखेंगे कि कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये दीन जो दिया था, इस अमानत को कितनी खूबसूरती से आप लोगों तक मुंतकिल करके गए और आपने वाकई मोहम्मद अरबी होने का हक अदा कर दिया। आपका अखलाक क्या था ये भी समझ लीजिएगा। आपका अखलाक सिर्फ स्माइल, मुस्कुराहट का नाम नहीं था। या तरीके के अखलाक करेक्टर को भी कहते हैं, खुलक, पुराना होना। जो चीज़ आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाती है ना, वो आपका अखलाक होती है। इसके अंदर दुश्मनों को माफ़ करना भी होता है, इसके अंदर मतानत और बुजुर्गी भी होती है। अल्लाह के नबी मैदान जंग में दिखेंगे आज के बारे में आपको, लेकिन मैदान जंग में जाने के बावजूद आपका अखलाक क्या होता था, आपकी आदत क्या थी। मैं इसको ज़रा सा एक मिसाल से समझाना चाहूँगी। कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं ना, गुस्सा उनके सर पे क्या ज़ुबान पे सवार होता है। अल्लाह ऐसे लोगों को भी हिदायत दे और उनके लिए एहसान करे, और ख़ास तौर पे जो ऐसे गुस्से वाले लोगों के साथ रहते हैं, अल्लाह ताला उन पे तो बहुत रहम करे। अच्छा, आप उनको देखेंगे कि घर में खुशी का मौका है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। कोई गमी का मौका है, गुस्सा सवार है। कहीं पिकनिक के लिए जा रहे हैं और बच्चे आने जाने में देर कर रहे हैं तो गुस्सा, क्या पता चला मिजाज में गुस्सा बंदे की जिंदगी के हर रंग पे असर लाता है। इसी तरह कुछ लोग नरम मिजाज होते हैं या गुस्से पे काबू होता है या ज्यादा नहीं बोलते हैं। अब ऐसे लोगों का हाल क्या होता है आप सब जानते हैं। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लीजिए, आपके मिजाज में नरमी थी, आपका अखलाक खूबसूरत था, हत्ता के मैदान जंग में आए हुए लोगों के साथ आपका मामला हुस्ने खुल का होता था। मत सोचिए कि मैदान जंग में आपकी भवें तनी होती थी और आपकी आंखों से जहर उबल रहा था और आप मुट्ठियां भींच रहे थे और ऐसा हो गया तो ये कर दूंगा, ऐसी कोई चीज प्यारे नबी की मुझे तो नहीं दिखी। मैदान जंग में भी मुतहम्मिल, ठीक है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, एक मौका मिलता है गज़वा बदर के मौके पे, जब सारी चीजें सेट करके आप रीश में चले गए तो रो रहे थे और अल्लाह के आगे आहुजारियां कर रहे थे कि रब, मैंने ये बड़ी मुश्किल से चंद लोग जमा किए हैं, अगर आज ये चले गए तो फिर कल तेरा नाम कौन लेगा। यानी अल्लाह के सामने तो गिड़गड़ाते थे लेकिन बंदों के साथ क्या करते थे। आइए जरा आज का वाक्य सुनते हैं। दुश्मने जहाँ पर मेहरबानी और नवाजिश। गज़वे बदर 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी को हुआ, जिसमें रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश को शिकस्त से दोचार किया। मक्का मुकरमा के बासी बदर के मुकदमे का नतीजा सुनने के लिए बेताब थे, वो बहुत बेचैनी से लड़ाई की खबरों के मुंतजर थे। आज की जुबान में कह दें कि खबरें सुनने के लिए चैनल्स को घुमा रहे थे। कुरैश के लोग अमूमन बैतुल्ला के सहन में इकट्ठे होकर नतायज के बारे में कयास आरइयां भी करते रहे, जैसे आज भी तबसरे हो रहे होते हैं मैचेस के बाद। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। सबसे पहले जो शख्स जंग के नतीजे की खबर लेकर मक्का मुकरमा पहुंचा, उसका नाम था हैसमान, आ या सीन मीम अलिफ नून बिन अब्दुल्ला अल खुजाई, यानी कबीला खुजाया से था। ये खुद भी जंग में शरीक था। इसने जैसे ही बैतुल्ला के सहन में अपना ऊंट बिठाया, लोग बेसब्री से इसकी तरफ दौड़ते हुए आए। हाँ भाई, पीछे की क्या खबर है, जंग का क्या नतीजा निकला, जल्दी बताओ। हमारे मुल्क में एक तो मैचेस का नतीजा और दूसरा वोटिंग का नतीजा, कौन जीता कौन हारा यही होता है अमूमी तौर पे। खैर, लोगों ने कहा कि जंग का नतीजा क्या निकला। हैसमान कहने लगा, पीछे का क्या पूछते हो, उतबा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया मारे गए, अबुल हकम बिन हिशाम और उमैया बिन खल्फ कत्ल किए गए। कुरैश के लोगों की एक बड़ी तादाद को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने बड़े बड़े सरदारों का नाम लिया। जंग के मकतूलीन में जब इसने बड़े बड़े अशराफ मक्का का नाम लिया तो उमैया बिन खल्फ का बेटा सफवान, जो खतीब में बैठा हुआ था, कहने लगा, अल्लाह की कसम ये शख्स होश और हवास खो बैठा है। अच्छा, जरा इससे मेरे बारे में पूछो, और को जरा आप उनके तनाजर से सोचिए, उनको कैसे यकीन आ सकता था कि ये क्या हो गया। अल्लाह ना करे आज के दौर में आपके सामने कोई आपके बड़े बड़ों की मौत की खबरें दे तो क्या दिल की कैफियत हो। कहने लगा, ये गलत कह रहा है, सुफियान बिन उमैया का क्या बना। लोगों ने कहा, हैसमान कहने लगा, लोगों वो देखो, सफवान तो हतीम में बैठा हुआ है। यानी वो मेक श्योर कर रहे थे कि ये वाकई होश में है कि नहीं। मगर मैंने इसके बाप उमैया और भाई अली को खुद अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा है। कुरैश को यकीन आ गया कि शिकस्त की खबर दुरुस्त है। इसके साथ ही हर घर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। शिकस्त की खबर को चंद दिन गुजर चुके थे। सफवान बिन उमैया मक्का मुकरमा का मारूफ असलहा फरोश और नहायत अमीर आदमी था। इसका चचा जद भाई उमैर बिन वहब बड़ा चल्लाक और शैतान सिफत इंसान था। यह भी गजवे बदर में शरीक हुआ था, बल्कि मदनी लश्कर की कुव्वत का अंदाजा लगाने के लिए इसी को रवाना किया गया था। यानी CID होती थी जंगों में, तो इससे करवाई गई। उमैर ने घोड़े पर सवार होकर लश्कर का चक्कर लगाया और वापस आकर बताया कि 300 से कुछ ज्यादा लोग हैं। ये बड़ा शरारती और फितना परवर इंसान था। इसे उर्फ आम में कुरैश का शैतान कहा जाता था, यानी क्लेवर मैन था। एक दिन सुफान और उमैर बैतुल्ला के साए तले हतीम में बैठे हुए थे। सुफान शदीद गुस्से में था, अपने बाप और भाई के बदर में कत्ल होने पर इसका खून खोल रहा था और वो जोश इंतकाम में दीवाना हो रहा था। रहा उमैर तो इसका बेटा वहब बदर के कैदियों में शामिल था और वो मुसलमानों की तहवील में था। मकतूलीन का जिक्र करते हुए सुफान ने कहा, अल्लाह की कसम, इन बुजुर्गों और साथियों के दुनिया छोड़ जाने के बाद अब जीने में कोई मजा नहीं रहा। उमैर ने कहा, सच कहते हो, अगर मुझ पर कर्ज ना होता और ये खौफ ना होता कि मेरे मरने के बाद बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं, तो मैं फौरन मदीना तय्यबा जाकर शम्मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रोशनी गुल कर देता। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। क्या तुम वाकई ये कारनामा अंजाम दे सकते हो? सुफान ने बेकरारी से पूछा। उमर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बस अदाए कर्ज और मेरे बच्चों की किफालत का मसला हल हो जाए तो मैं ये काम आसानी से कर सकता हूँ। सुफान बोला, तुम इसकी फिक्र ना करो, ये तो मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है। मैं कर्ज और किफालत की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारा सारा कर्ज मैं उतारूंगा और जो कुछ मेरे बच्चे खाएंगे और पहनेंगे वही तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मुयस्सर होगा। बस तुम ये काम कर दो। और हाँ देखो, ये नहायत राजदारी से करने का काम है। रूहे जमीन पर इस मंसूबे का मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। उमर बोला, बिल्कुल ये रास रास ही रहेगा, तुम फिक्र ना करो। अच्छा तो फिर हाथ मिलाओ, यानी शेक हैंड किया, और वादा करो कि इस बात की किसी को हवा तक ना लगेगी। मैं इस मंसूबे पर फौरी अमल शुरू कर रहा हूँ। सुफान, तुम्हें मालूम है कि मेरे पास मदीना तय्यबा जाने का एक माकूल बहाना भी है। मेरा बेटा वहाब मुसलमानों की कैद में है, इससे मुलाकात करने का बहाना। इसने अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा, यानी कोई शक नहीं करेगा कि ये इधर क्यों आ गया, या जैसी है जैसे बॉर्डर क्रॉस करना हो दूसरे मुल्क का। तो सुफान घर आया, अपनी तलवार म्यान से निकाली तो जरा जंग आलूद नजर आई। इसने इसे खूब तेज करने के बाद जहर में बुझाना शुरू कर दिया। यानी उस दौर में तलवार के ऊपर जहर भी लगा लेते थे कि अगर कोई तलवार के वार से बच भी गया तो जहर का असर उसके जिस्म में चला जाए। और जेरे लब बुड़बड़ाया, आहा, अब इस तलवार से मेरे बाप और भाई के कत्ल का बदला लिया जाएगा। फिर इसने अपनी जहर में बुझी तलवार उमर के हवाले की और इसे जल्द अज जल्द मदीना तय्यबा रवाना होने की ताकीद की। उमर मदीना तय्यबा की तरफ रवाना हुआ। इन दिनों मक्का मुकरमा की हर मजलिस में, हर घर में बदर ही का किस्सा मौजुए गुफ्तगू था। आज के हालात पे क्यास कीजिए, जो वर्ल्ड लेवल पे इशू चल रहा होता है, हर तरफ उसी की बातें हो रही होती हैं। सुफान मिलने जुलने वालों से बड़े पुरएतमाद लहजे में कहता, बस चंद ही रोज की बात है, मैं ऐसी जबरदस्त खबर सुनाऊंगा कि तुम लोग बदर का गम भूल जाओगे। उमर बिन वहाब अपनी चल्लाकी, सफाकी, शरारते तबा और बदबातनी के बाद शैताने कुरैश के लकब से मशहूर तो था ही, वो मक्का मुकरमा में भी अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा को तकलीफ देने में पेश पेश रहता था। बदर के रोज इसके बेटे वहब को एक अंसारी सहाबी रिफाया बिन राफे ने गिरफ्तार कर लिया था। उमैर बिन वहब तेजी से सफर करता हुआ मदीना तय्यबा पहुंचा। अब यहाँ से जरा आप अखलाक नबवी को देखिएगा। और ये सारी लाइफ टाइम स्टोरीज आपको क्यों सुना रही हूँ? ताकि आप ये ना कहें कि हमारी तो जिंदगी और है, हमारे तो मामले और हैं। देखिए, वो भी इंसानों में जीते थे, उनके भी अपने मामलात थे, अल्लाह के नबी भी इंसान थे, आपके साथ भी सब जरूरियात लगी हुई थी, दुश्मनों के साथ कैसा मामला करते थे। मस्जिद नबी के सामने इसने अपनी ऊँटनी बिठाई और नीचे उतरा। इधर मदीना तय्यबा में मुसलमानों के दरमियान भी बदर के मार्के पर ही बात हो रही थी। वो अपनी कम तादाद के बावजूद इस फतह और नुसरत और ताईद रब्बानी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। और बदर के वाक़यात दोहरा कर खुश हो रहे थे। हज़रत उमर फारूक और कुछ दूसरे सहाबे कराम मस्जिद के कोने में बैठे बदर की बातें कर रहे थे कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से इन्हें इज्जत व वक़ार बख्शा और कुफार को जलीलो ख्वार किया। यहाँ से नोट कीजिए, मुसलमान को बड़ी से बड़ी फतह भी मिल जाए ना तो अपने गुण नहीं गाता, अपने मुँह आप मियाँ मिट्ठू नहीं होता, हर चीज़ को अल्लाह के खाते में डाल देता है। खैर, अचानक आपकी निगाह उमर पर पड़ी जो तलवार लटकाए अल्लाह के रसूल की तरफ भड़कता चला आ रहा था। हजरत उमर फारूक की बसीरत काम आई, कहने लगा, हो ना हो, अल्लाह का ये दुश्मन किसी खतरनाक इरादे से यहाँ आया है। ये बदर के रोज लोगों को जंग के लिए भड़काने वालों में पेश पेश था, इसी ने अंदाजा लगाकर काफिरों को मुसलमानों की तादाद बताई थी। हजरत उमर ने इसके गले में लटकी हुई तलवार के नियाम की पट्टी से इसकी गर्दन दबोच ली और इसे गिरफ्तार करके खिदमत नबवी में हाजिर हुए। अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह का दुश्मन तलवार लटकाए आ रहा है। अब जैसे ही कि एयरपोर्ट पे किसी के सामान में से कोई वेपन निकल आए, इशाद हुआ, उमर इसे छोड़ दो, आगे आने दो। फारूक आजम ने सहाबे कराम से कहा, तुम अल्लाह के रसूल के पास ही रहना और इस खबीस पर निगाह रखना, ये नहायत खतरनाक आदमी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उमर मेरे करीब आओ। वो करीब होकर जाहिलियत के तरीके के मुताबिक कहने लगा, एन अमू सबाहन, आप लोगों की सुबह बखैर हो, जिसको आप कहते हैं गुड मॉर्निंग। आपने इर्शाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इन जाहिलाना अल्फाज के बदले में हमें एक ऐसे तहिया से मुशर्रफ किया है जो तुम्हारे इस तहिया से कहीं बेहतर है। और तहिया कहते हैं वक्त मुलाकात के सलाम को, यानी सलाम से जो अहले जन्नत का तहिया है। हाँ उमैर, बताओ कैसे आना हुआ? इसने कहा, मैं अपने कैदी बेटे वहब का हाल मालूम करने के लिए आया हूँ, बरए मेहरबानी इसके बारे में एहसान फरमा दीजिए। फरमाइए, तुम्हारे गले में तलवार कैसी लटक रही है? वो बोला, अल्लाह इन तलवारों को गारत करे, उन्होंने पहले हमें क्या फायदा पहुंचाया है जो पहुंचाएंगी, यानी बात बदल गया। इरशाद फरमाया, उमर सच सच बताओ, तुम किस मकसद के लिए आए हो? कहने लगा, सच कहता हूँ, मैं सिर्फ अपने कैदी बेटे ही के लिए आया हूँ। इरशाद सुनिए, क्या ये सच नहीं कि तुम और सफवान बिन उमैया हतीम में बैठे थे? तुम दोनों ने बदर के कुएं में फेंके जाने वाले मकतूल सरदारों का तذکرہ किया, फिर तुमने कहा, अगर मुझे कर्ज की अदायगी और अहल याल की किफालत का अंदेशा न होता तो मैं मदीना तय्यबा जाकर मोहम्मद को कत्ल कर देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुफान बिन उमैया ने तुम्हारा कर्ज चुकाने और बच्चों को अपनी किफालत में लेने की जिम्मेदारी कबूल कर ली इस शर्त पर कि तुम मुझे कत्ल कर दो। याद रखो उमैर, अल्लाह तुम लोगों के मुकाबले में मेरा मुहाफिज है। क्या खूबसूरती है इसमें! इसको तो वो समझे जिसको कोई जान की धमकी दे और वो अल्लाह के नाम पे खड़ा हो। याद रखिए, ये तहम्मुल और सुकून प्यारे नबी की सुन्नत थी। आप जरा अपने आप पर लीजिए, एक बंदा जो बहुत ज़हीन होता है ना, जब वो एक नतीजे पर पहुंच जाता है तो फिर वो फैसला करने में देर नहीं लगाता। हजरत उमर ने भांप लिया, फिर भी सहाबा को कहा कि अच्छा ठीक है, इसको अल्लाह के नबी के पास ले जाओ, लेकिन नबी के इर्द गिर्द ही रहना, ये कुछ ना करे। लेकिन प्यारे नबी ने क्या किया? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा। हम में से कोई होता ना, उसको बाहर रोक लेते, पकड़ो इसको, ये आया, ये सारी बातें करके, और इसको पकड़ो और पुलिस को बुला के उसके हवाले कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अखलाक लाइए, दुश्मनों को दोस्त बनाइए, दोस्तों को भी दुश्मन बनाए बैठे हम दुआ करते हैं अल्लाह दुश्मनों को दोस्त बना दे, दीन से रोकने वालों को अल्लाह दीन का दाई बना दे, और इसी तरह से हमारे खानदानी झगड़े और मामलात को दुरुस्त कर दे। बात बात पे तो अपनों को हम धमकियां देने वाले बन जाते हैं। उमर अकलमंद था, जो ही उसने अल्लाह के नबी की जुबान से ये बातें सुनी तो वे इख्तियार पुकार उठा, अशहदु अन्नक रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि यकीनन आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह के रसूल, आप हमारे पास आसमानों की जो खबरें लाया करते थे हम इन्हें झुटलाया करते थे, लेकिन ये मामला तो ऐसा रासदारी का था कि मेरे और सुफवान के अलावा किसी और को इसकी हवा तक नहीं लगी। अल्लाह की कसम, मुझे यकीन है कि आपको ये बातें अल्लाह ताला ने बताई, यानी वो खुद गवाही देने वाला बन गया। रब्बे कायनात के अलावा कोई और ये बात आपको बता नहीं सकता, और उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत अता फरमाई और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी का सोचिए उनके दिल पे क्या ठंडक बरसी होगी। आज हम पढ़ेंगे ईमान वालों के दिलों की ठंडक। काफिरों को कत्ल करना नहीं, काफिरों के कुफर को ख़त्म करना था, इसीलिए वो बाइज्जत थे। अल्लाह के नबी को देखिए, खंदा पेशानी और कुशादा दिली का दरिया मौजज़ा है। अफ़ो करम ऐसा कि वो शख्स सैयदुलअव्वलीन वालआख़रीन को कत्ल करने के लिए आता है। इसके घिनौने जुर्म को ना सिर्फ माफ़ कर दिया जाता है, बल्कि इसे अपने साथियों में शामिल कर लिया जाता है। जी आप कहते नाना, अभी ज़रा कुछ देर देखें इनको, पता नहीं अभी सच्चे नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो, कुछ साजिश ना हो। ना ना ना, अल्लामा इब्ने असीर के बयान के मुताबिक उमैर बिन वहब के इस्लाम लाने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब वो मदीना तय्यबा आया तो इससे मुझे इस कदर शदीद नफ़रत थी कि वो मुझे खंजीर से बदतर लगता था। ला खंजीरु कान अहब्ब इलैय मिन्हु हीन तला, और मगर इस्लाम लाने के बाद जो मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा। अल्लाह अकबर, वलहु अल्यौम अहब्ब इलैय मिन बादी बनीश, क्योंकि छोटी उम्र के थे। अल्लाह के नबी सल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, अपने इस भाई को दीन सिखाओ, इसे कुरान पढ़ाओ और इसके कैदी बेटे वहब को रहा कर दो। उमैर इस हुस्ने सलूक का तसव्वुर भी ना कर सकता था। अब वो अपनी गुज़श्ता हरकात पे नादिम है, इनकी तल्लाफी का ख्वाहिशमंद है। अर्ज़ करता, अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह के नूर को बुझाने की बहुत कोशिश की, अब अपने इन जरायम की तलाफी करना चाहता हूँ। मुझे मक्का मुकरमा में रहने की इजाज़त अता फरमाएं। महले मक्का मुकरमा को और अल्लाह और उसके रसूल और दीन इस्लाम की तरफ दावत दूंगा। इनकी ये दरख्वास्त मंजूर हुई। फिर वो दीन हक के दाई बनकर मक्का मुकरमा में मुकीम रहे और बहुत से लोगों ने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इतना रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी, तो जो लीडर्स होते हैं ना, वो रिस्क टेकर भी होते हैं। हर वक्त हर एक पे शक नहीं करना चाहिए, वरना बहुत सारे लोगों की खैर से आप महरूम हो जाएंगे। इधर सुफवान अपनी मतलूबा और पसंदीदा खबर का बड़ी बेचैनी से मंतजर था। अब मक्का के हालात भी सुन लीजिए। वो मदीना तय्यबा से आने वाले हर मुसाफिर से पूछता, हाँ भाई, तुम्हारे पास कोई नई खबर है? एक दिन इसे किसी सवार ने बताया, सुफान, तुम्हारे लिए बहुत अहम खबर है। इसने कहा, जल्दी बताओ क्या खबर है? सवार ने कहा, उमैर मुसलमान हो गया है। ये था अखलाक नबी। तलवार से ज्यादा अखलाक से इस्लाम फैलाया मेरे नबी ने। मैदान जंग का अखलाक तो और भी जरूरी होता है मैदान सुलह से। जब आपस में जंग लगी और रस्सा कशी हो, इख्तलाफ आता ना, उस वक्त आप क्या रवैया अख्तियार करते हैं? ये हैं आप असल में। अच्छों से तो सब अच्छे होते हैं, मुबारकों के मैसेज तो हर एक एक दूसरे को दे रहा होता है, चाहे दिल में कितना रंज हो किसी रिश्तेदार की किसी खुशी पे। सुफान के कदमों तले से जमीन निकल गई। इसने कसम खाई कि वो उमैर से सारी जिंदगी कलाम ना करेगा, ना इसके किसी काम आएगा। ये सीरत इब्ने हिशाम का वाक्य आपको सुनाया गया, रही को मखतूम में भी है और किताबों में भी है। कभी आपने देखा या सुना कि किसी शख्स ने कत्ल के लिए आने वाले को इस तरह फराख दिली से माफ कर दिया हो? ये रसूलुल्लाह ही थे जिन्होंने अपने हुस्ने अखलाक से लोगों के दिलों को जीता। सरों पर नहीं बल्कि दिलों पर हुकूमत की। जो दिलों को फतेह करे वही फातेह जमाना। तो क्या पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक अपनाना, इसको इख्तियार करना आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर कितनी खैर को बढ़ाने का जरिया बनेगा और कैसे लोग जौक दर जौक इस दीन पे आएंगे। अल्लाह मुझे आपको यही हिकमतें अता फरमाए और हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर अपने आप को जमा दें। ये है वो दीन जिसकी दावत आपको मुझे हर पारे में दी जा रही है कि नबी वाला अखलाक इख्तियार कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगियों में भी वो खैर आ जाए कि जिसके बाद कई दूसरे लोग भी अल्लाह के दीन पर आ जाए। ये वो चीज़ें हैं जिसको आज उम्मत को दूसरों तक पहुँचाना है। अल्लाह करे कि हम मोहब्बतों के पैगाम के साथ साथ हक का पैगाम देने वाले बने और लोगों को इस्लाम का वो पहलू तो दिखाएं कि जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा।